ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षोरन्मीलितं यन्नं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्नामनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनारघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिककान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सरि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत शुभ दिन है, शुभ तिथि है, ब्रज में तो हर दिन शुभ है, लेकिन हमारे जो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार तिथि के अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और उसी दिन श्री कृष्ण प्रकट लीला में उनके वसंत रास हुई और कृष्ण बलराम के रासलीला भी हुई उसी दिन रात को। और साथ ही साथ आज श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि और एक दूसरे चैतन्य महाप्रभु के परिकार बंशीवरण ठाकुर के आविर्भाव तिथि। और आज भी वैष्णव कैलेंडर में नहीं लिखा है हमारा, लेकिन जो राम के वक्ता है उनको मालूम है और ये मानता है कि आज हनुमान रामचंद्र के वक्त उनके आविर्भाव तिथि भी है आज। हरि बोल हनुमान जी की जय। तो अभी हम भी मनाते थे रामचंद्र के जन्मोत्सव और हमारे ठाकुर जी के भी ब्रह्मोत्सव मनाते थे। बहुत शुभ तिथि रामनवमी और जो राम के वक्त है नवरात्रियों के 9 दिन के लिए इस रामलीला में लीन हो जाता है। और रामचंद्र के अनंत वक्ता है और इनमें से बहुत प्रसिद्ध है, शायद सबसे प्रसिद्ध तो है हनुमान। उनके सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन यहां पर भी तो एक वानर एक बंदर के रूप में है, लेकिन उनके सच्चिदानंद स्वरूप है और शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। और बहुत सारे लोग जो भरतवर्ष में रहता है तो रामचंद्र को मानता है भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम, शायद कृष्ण से ज्यादा राम भक्त है इस जगत में, क्योंकि कृष्णा तो लीला पुरुषोत्तम है और बहुत चीज करता है, जो विशेष करके जब ब्रज में थे जो शास्त्र के अनुसार न्याय है। लेकिन रामचंद्र भगवान मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किए थे, तो शास्त्र के अनुसार गुरुजन के अनुसार सब कुछ करते थे। हमको दिखाने के लिए कि कैसा रहना चाहिए, शेष करके जब राजा के रूप में है लेकिन वान आश्रम के अनुसार भी क्षत्रिय के और वर्ण और गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए कैसे हमको आगे जाना है इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक मार्ग आगे जाने के लिए। और तो उनके प्रिय भक्त है हनुमान जी और उनके भी लीलाएं बहुत, तो कृष्ण रामचंद्र के संबंध में बहुत सुंदर है और बहुत सेवाएं किए थे हनुमान रामचंद्र के लिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग जैसे कृष्ण की पूजा के पहले हमको गुरु पूजा करना चाहिए और कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार का स्मरण करके कृष्ण की पूजा करता है, वैसे ही रामचंद्र भगवान के पूजा के पहले सबसे पहले भी गुरु पूजा करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि के भी पूजा करता है रामचंद्र के बाद, इसके बाद भी हनुमान उनके पूजा करके राधा ये सीताराम की पूजा करता है। तो और जो राम के भक्त है तो रोज रोज उनकी पूजा तो करेंगे जरूर, और अन्यथा जो थोड़ा सा भगवान को मानते हैं रामचंद्रा तो मंगलवार जरूर हनुमान की पूजा करता है। और उनको मालूम है कि जब उनके सर में आता है तो बहुत कुछ कर सकता है जो अन्यथा संभव नहीं है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए बहुत सारे समस्या आ जाता है भक्त के जीवन में भी, लेकिन शुद्ध वैष्णव की कृपा से भगवान की कृपा से इसका पार कर सकता है, समस्या का हल मिल सकता है। तो इसलिए हनुमान की पूजा भी करता है मंगलवार, विशेष करके मंगलवार और आज के दिन में भी आज के तिथि तो उनके विशेष पूजा करता है हनुमान जी के। हनुमान जी जयंति की। हरे कृष्णा। हम भी रामचंद्र का याद करते हैं कभी कभी और चैतन्य महाप्रभु के परिकार में भी कोई है जो रामचंद्र के भक्त है, जैसे मुरारी गुप्ता और ये जीव गोस्वामी ये जीव गोस्वामी के पिता अनुपम जो सनातन और रूप गोस्वामी के भाई थे, छोटे भाई थे, ये भी रामचंद्र के भक्त थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु मूल रूप है जैसे कृष्णचंद्र भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। और जब यहां पर विराजमान थे 500 वर्ष से पहले, उन्होंने भी हमको दिखाए थे कि कैसे भगवान की भजन करना चाहिए, विशेष करके कृष्ण की भजन कैसे करना चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर के पास पहुंचे जैसे चिन्हबरण में, उसी समय राम का नाम लिए थे और हनुमान मंदिर में भी गए थे और प्रणाम अर्पण किए थे हनुमान जी को, और दक्षिण भारत में भ्रमण करते हुए भी एक बार प्रसिद्ध मंत्र का उच्चारण करते थे, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षामाम, कृष्णा 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 पाही माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाही माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम। तो ऐसे कहते हुए भगवान श्री राम का नाम भी लेते थे और महामंत्र में भी हम तो महामंत्र का जप करते हैं, रोज रोज कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भी राम का नाम आ जाता है। और दक्षिण भारत में जो भगवान श्री राम को मानता है, ये तो हरे राम से शुरू करता है ये महामंत्र, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे माता है ये। हाँ, तो महामंत्र में ये तो राम नाम, ये तो रामचंद्र है और कृष्ण भी इसमें आ जाता है, तो कृष्ण रामचंद्र के अभिन्न स्वरूप है। लेकिन गौरी वैष्णव संप्रदायों ने तो हमारे लिए भी रामचंद्र पूजनीय है, आदरणीय है और उनका स्मरण भी करता है। लेकिन जब कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो राधे श्याम का स्मरण करता है। तो लेकिन जब सखी भाव में है और जब वत्सल्य भाव में है या सख भाव में है तो शिशु माई और दस भाव में जरूर से ज्यादा कृष्ण बलराम का मानता है, तो कृष्ण बलराम हरे कृष्णा, कृष्ण ही है, हरे भी हरी हरी कृष्ण ही है, कृष्ण है और राम 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 बलराम है। तो एक बार दक्षिण भारत में हैदराबाद में प्रभुपद वहां पर थे, प्रचार करते थे और उनके भक्त भी वहां पर थे और दो सन्यासी थे। तो एक भक्त ने बोला, ये महामंत्र में ये राम, ये तो रामचंद्र है। दूसरे बोलते थे, नहीं ना, ये रामचंद्र नहीं है, ये बलराम है। तो लड़ाई हो गया सन्यासी के बीच में, जय राधे श्याम। तो उन्होंने बोला, ठीक है, प्रभुपति यहां पर है तो उनसे पूछ लेंगे, राम तो कौन है महामंत्र में। प्रभुपद से पूछा तो प्रभुपद ने बोला, तो महामंत्र में तो ये राम, ये रामचंद्र है, बलराम भी है और परशुराम भी है। ठीक है, हाँ, तो सच्ची बात के लिए तो कृष्ण बलराम है। और लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला प्रभुपद के गुरु महाराज कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वास्तव में हम रूप गोस्वामी के अनुसार चलता है, तो रूप गोस्वामी तो ब्रज की लीला में रूप मंजारी है, तो सखी गोपी भाव में है, मंजारी भाव में है। जब महामंत्र को चरण करता है तो उसी समय ये राम कौन है, राधिका रमान, तो रमन करता है कृष्ण के साथ। तो इस भाव से हम महामंत्र के जप करते हैं जब गोपी भाव में है, राधा कृष्णा और गोपियां और मंजारी का स्मरण करते हुए। तो ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य सिद्ध परिकार जय गोस्वामी के कृपा से अभी हम ये समझ सकता है और विश्वनाथ चक्रवर्ती की कृपा से भी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपद की कृपा से हम यहाँ पर है और थोड़ा सा चेष्टा कर रहे हैं आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में। तो आज कृष्ण के वसंत रास, तो कृष्ण के तो अनंत लीला है आध्यात्मिक जगत में, इनका नाम है नित्य लीला, निरंतर है ये लीला, नित्य लीला। उसी समय कृष्ण किशोरावस्था में है और श्रीमती रानी किशोरी है और इसमें तो हमेशा राधा कृष्ण तो लीला में लीन है और वहां पर भी गोप है दूसरे और नंद बाबा यशोदा माँ और लीला में लीन है। और तो प्रकट लीला जब यहां पर कृष्ण आता है तो इसमें भी नित्य लीला भी है और लेकिन नैमित्तिक लीला भी है। कुछ समय के लिए लीला जो है इसका नाम है नैमित्तिक लीला, जैसे कृष्ण के जन्म और इसके बाद हर वर्ष उनके जन्मोत्सव भी मनाते थे, एक साल दो साल के तीन साल के जब कृष्ण थे उन उत्सव मनाते थे और अलग अलग असुर लोग यहां पर आते थे और कृष्णा उनका मर डाला सबको उन्होंने उनका बात किए थे और ये तो नामित्तिक लीला है और मथुर गमन भी यही नामित्तिक लीला है, फिर इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाता है, नित्य जगत में ना है, नित्य लीला में ना है ये। तो चैत्र मास में चैत्र मास तो हर मास जब कृष्ण के संबंध में है बहुत शुभ है और हर मास का भी कृष्ण का नाम है। जैसे चैत्र मास एक नाम है इस मास के और दूसरा नाम है विष्णु, विष्णु मास और हर तिथि भी शुभ है जब कृष्णा के स्मरण करता है, महाप्रभु के स्मरण करता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार गुरुजान के अनुसार तीन तिथि जो है सबसे महत्वपूर्ण है, एक है एकादशी तिथि, इसलिए दो बार जो आता है एकादशी तिथि, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरे शुक्ल पक्ष में, ग्यारहवें दिन जो है तिथि जो है पक्ष में एकादशी तिथि ये मनाता है। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार तो अपने माँ को एक बार बताते थे चैतन्य महाप्रभु के, हाँ आपको तो एक प्रार्थना है और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो यशोदा माँ उन्हें बोला ठीक है मांगो, क्या क्या चाहिए आपको। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एकादशी तिथि के दिन आपको ये अन्ना मतलब चावल, वही बंगाली के लिए चावल छोड़ना बहुत मुश्किल है और ओरिया भक्त के लिए भी, ये रोज रोज खाता है ना ओरिया भक्त है, यहाँ बंगाली है, कौन है यहाँ बंगाली, बंगाली रोज रोज खाता है, एक दो तीन बार खाते है चावल, तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन महाप्रभु ने बोला आपको ये अन्न चावल और चपाती पूरी ये सब छोड़ना है, मेरे को अर्पण कीजिए, मेरे को दे दीजिए, उसी दिन ये छोड़ना है और फलाहार अल्पाहार लेना है उसी दिन एकादशी तिथि के, और मान लिया और उसी माए सख्त लोग एकादशी तिथि का पालन करता है। कोई कहता है क्योंकि अन्न में पाप पुरुष है इसलिए हमको ये छोड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब भगवान को अर्पण करता है चावल सब ये चपाती पूरी उसी समय तो पाप पुरुष नहीं रह सकता है, चले जाता है। लेकिन क्योंकि आदेश दिया है अपने माँ को इसलिए हम पालन करता है एकादशी तिथि, तो शुभ तिथि है और उसी समय ज्यादा जाप करना है, भगवान का स्मरण करना है और भौतिक कार्य जो है ये छोड़ना है यथासंभव। जैसे गृहस्थ के लिए बिजली बिल तो मिलता है, पैसे जमा करना है, ये दूसरे दिन पे कर सकता है, तो उसी दिन में तो ज्यादा भजन करना चाहिए। और वैसे ही दूसरे शुभ तिथि है अमावस्या तिथि है और सबसे शुभ है पूर्णिमा तिथि। तो उसी दिन भी ब्रज में आप देख सकता है परिक्रमा लगाता है एकादशी तिथि पे, अमावस्या तिथि पे भी और पूर्णिमा तिथि पे परिक्रमा करता है, वृंदावन के या गोवर्धन के परिक्रमा करता है। और तो कृष्ण के लिए तो जब अमावस्या है तो कृष्णाओं के रोज रोज उनके नित्य लीला है, दिन बार इसमें लीन है लीला में, दिन में तो गोप के साथ गोचरण लीला के लिए जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए भी गोप को छोड़ता है और राधाकुंड की ओर चले जाता है और वहां पर श्रीमती राधारानी के साथ राधाकुंड पे वहां पर उनकी लीला है, दोपहर के समय है और इसके बाद शाम को फिर से गोप के साथ है, नंदा बाबा यशोदा माँ के साथ है। और इसके बाद तो रात्रि जब सब सो जाता है, गोप और नंदा बाबा यशोदा ये सो जाता है, लेकिन जब सोता है उसी समय भी कृष्ण का स्मरण करता है, स्वप्न में आ जाता है कृष्ण और बलराम ये दोनों बाया, क्योंकि दिन बार कृष्ण के चिंतन में लीन है, कृष्ण की सेवा में लीन है, इसे रात को भी उनका स्मरण करता है। लेकिन कृष्णा जगन आय सोता है, लेते हुए तो श्रीमती रानी का चिंतन करता है, श्रीमती रानी से मिलना है और पहले से संदेश भेज दिया उनके मित्र के साथ। और जैसे सुबाल, उनको मालूम है कि उनसे मिलता है श्रीमती रानी गोपियों से, उनके साथ संदेश दिया है, या उनके घर पे जो उनके भी वहां पर भी दस्यां है जो जिनको मालूम है, कुंडलाता धनिष्ठाओं को मालूम है कि गोपियों से मिलते हैं, उनके साथ भी संदेश भेजता है, या वृंदा देवी के साथ हमसे मिलना है तो रात को एक निकुंज में निकुंज लीला के लिए। और जब अमावस्या है उसी समय तो चंद्रमा आए है, तो अंधेरा में फिर भी उनके पास भी दीप है, तो और किसी प्रकार से पहुंचता है निकुंज लीला में, निकुंज लीला के लिए कुंज में। लेकिन जब चंद्रमा प्रकट होता है पूर्णिमा के दिन, तिथि पूर्ण चंद, चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट है, पूर्ण चंद है उसी दिन, तो कृष्णा जब एक दिन से पहले भी देखता है काल तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि है, तो रस नृत्य के लिए तो तैयारी करना चाहिए, तो संदेश भेजता है। और तो चैत्र मास के अंतिम दिन है ये पूर्णिमा तिथि, पहले कृष्ण पक्ष है प्रतिपद तिथि से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, इसके बाद शुक्ल या गौर पक्ष ये प्रतिपद से पूर्णिमा तिथि तक। और ये भी वसंत रास है, क्योंकि वसंत ऋतु के अंतिम दिन है, तो दो महीने के वसंत ऋतु दो महीने के लिए है, ये है फाल्गुन मास और चैत्र मास, ये दोनों मास ये वसंत ऋतु के है। इसके बाद अब वैशाख मास ये ग्रीष्म ऋतु गर्मी ऋतु शुरू होते हैं, और अभी भी थोड़ा सा भी अनुभव कर सकता है गर्मी होते हैं। तो वसंत रास किए थे जब यहां पर थे कृष्णा, तो रास नित्य करते हैं रासलीला जब पूर्ण चंद है गोपियों के साथ, वंशी बजाते हुए गोपियों को बुलाते हैं और आ जाता है और रस नित्य में लीन हो जाता है। कभी कभी अकेले तो कभी अकेले नाचता है, कभी गोपियों को बताता है अभी हे राधे तुम नाचो, तो रानी अकेले नाचती है, अब दूसरी गोपियों बुलाता है ये अकेले नाचते हैं, कभी कभी सबके साथ नाचता है, तो कभी कभी बताता है आचार्य लोग तुमके विस्तार रूप में, तो हर दो गोपी के बीच में कृष्ण प्रकट हो जाता है और नाचता है। लेकिन जो ऐश्वर्यहीन भक्त जो है मधुरी भक्त के, ये देखता है कि कृष्ण तो अद्भुत है और बहुत जल्दी भी दौड़ सकता है, नाच सकता है, और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्दी नाचते थे, तो ऐसे लगता था कि हार गोपी के साथ भी है। और जैसे कभी कभी जब उत्सव मनाता है कोई एक दीप हाथ में रखता है और ऐसे घुमाता है, ऐसे करके ऐसे लगता है एक चक्र हो जाता है दीप से, वैसे ही जल्दी जल्दी जब नाचता है तो हार के साथ भी नाच सकता है कृष्णा, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो जो भी है, तो कभी गोपियों के साथ नाचता है और कभी अकेले नाचता है, और कभी दंड के साथ कृष्ण के पास दंड है, गोपियों के साथ दंड है, और ऐसे करते हुए नाचता है, तो और सबको तो इससे बहुत आनंद मिलता है। परमानंद। और प्रभुपाद ने भी एक तत्पर्य में लिखा है कि ये भी हमारे एक तो अभिष्ट है, इच्छा है कि रासलीला में प्रवेश करना है, लेकिन इसके लिए योग्यता होना चाहिए। तभी हम तो सदा के शरीर में है, और तो सिर्फ जब उत्तम अवस्था पे है, जब आध्यात्मिक अवस्था पे है, जब आत्मा आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण रूप से अनुभव किया है, जब वस्तु सिद्धि के अवस्था में है, पहले स्वरूप सिद्धि होता है जब अनुभव कर सकते हैं हमारे स्वरूप क्या है कृष्ण के संबंध में, कृष्ण लीला में। और इसके बाद वस्तु सिद्धि जब प्राप्त होता है, उसी समय कृष्ण के साथ नाच सकता है, इससे पहले तो संभव नहीं है। तो लेकिन अभी तो सड़क के रूप में है, इसका श्रवण कर सकता है, और इसके बाद जब इसका श्रवण करते करते इसका कीर्तन भी करता है, इसका स्मरण करता है आत्मा मात्र से, लेकिन जब आगे है तो अनुभव कर सकता है कुछ, और कृष्ण के नित्य लीला की स्फूर्ति हो सकता है, लेकिन प्रवेश कर सकता है सेव जब सिद्ध वस्त्र पे है। लेकिन इसका श्रवण करना चाहिए जरूर, क्योंकि कृष्ण के उनके जो लीला का श्रवण नहीं करता इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले श्रवण करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, इसके बाद जब सिद्ध हो जाता है तो इसमें प्रवेश भी कर सकता है नित्य लीला में। श्री कृष्ण के वसांतरास की तो और वास्तव में सब कृष्ण की लीला सिर्फ रास लीला ना है, दूसरी लीला भी रसमय है, इसमें रस है। तो वैसे ही बलराम कृष्ण के पहले विस्तार रूप है, कृष्ण के वस्त्र में अभिन्न स्वरूप है, लेकिन अभिन्न भी है, अभिन्न है और भिन्न भी है, तत्व से तो अभिन्न है, ये भी सच्चिदानंद के स्वरूप है, परम सत्य है, परम तत्व है, लेकिन फिर भी मूल रूप कृष्ण है, लेकिन पहले विस्तार, पहले रूप विस्तार है उनके, ये बलराम है। और दूसरी चीज भी है कि तो दोनों के सच्चिदानंद स्वरूप है, और दोनों के पास तो उनके संबंध है, उनके जैसे माँ के साथ तो उनके वत्सल्य भाव है, तो नंद बाबा यशोदा के रोहिणी माँ कृष्ण के बलराम के प्रति उनके वत्सल्य भाव के है, और उनके दोस्तों हैं मित्र है सख्य भाव में, और दास भी है, सेवक भी है दास्य भाव में, और बलराम के भी सखियां भी है, मधुर्य भाव में भी है जो कोई है जो सखियां जो है, लेकिन जो कृष्ण के सखियां जो है बलराम के साथ रास नित्य में नहीं करता है, इसमें नहीं जाती है। तो आपने गोपियां है तो और और हाँ दूसरे भी है कि बिना है कि कृष्ण तो श्याम रंग के है और बलराम शुक्ल सफेद रंग के है, और वस्त्र भी अलग है, तो और लेकिन बलराम के साथ के पास भी वंशी है, कभी कभी वंश भी बजाता है, और कभी कभी भी मोर पंख रखता है मुकुट पे, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन कृष्ण हमेशा है वंशी और मोर पंख। इसलिए जब दर्शन मिलते हैं रोज रोज तो देखता है कृष्ण के पास तो वंशी है और मोर पंख है, बलराम दर्शन आई भी है लेकिन रोज रोज नहीं है। तो लीला में भी ऐसा है। तो जब दोनों भाई तो 11 साल वर्ष के बाद मथुरा की ओर चले गए थे, भगवान की इच्छा से तो सब कुछ होता है, लेकिन कंस लीला में उनको यहां पर बुलाते थे, बुलाया थे युद्ध करने के लिए, तो उत्सव मनाने के लिए तो वहां पर गए थे, लेकिन जो वहां पर गए थे ये कृष्ण बलराम के विस्तार रूप है। कृष्ण बलराम उनके आदि रूप जो है ये हमेशा ब्रज में है, वैसे ही शिवचरा रानी यमुना देवी मूल रूप हमेशा ब्रज में है, और जब बाहर जाता है जैसे कृष्ण बलराम ये उनके भाव प्रकाश है, वसुदेव कृष्ण और शंकरशम बलराम प्रकट हो जाता है अक्रूर करते यहां पर की सीमा पे, या ये ब्रज के ये वृंदावन की सीमा पे, जब मथुरा की सीमा जाता है उसी समय तो वहां पर कृष्ण बलराम आदि रूप अप्रकट हो जाता है, और कृष्णा वसुदेव कृष्णा और शंकरशम बलराम प्रकट हो जाता है और अक्रूर के साथ मत्र में प्रवेश कर रहा है। और इसके बाद तो कुछ सालों के लिए वहां पर इसके बाद द्वारका की ओर चले जाता है, और युद्ध के लिए तो कुरुक्षेत्र में भी वहां पर गए थे कृष्णा, तो वासुदेव कृष्णा है। और यहां पर तो उनका मिलन भी गोपियों के साथ जब एक आज भी ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है रात को और सूतक है सॉरी 4 बजे से, तो एक ग्रहण ये सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या तिथि पे, तो उसी समय सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा तिथि पे जब चंद्रमा है उसी समय चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या तिथि में सब वहां पर उपस्थित है कुरुक्षेत्र में, यदुवंश के हस्तिनापुर के सब आदरणीय लोग वहां पर गए स्नान लेने के लिए, और ब्रिजवासियां भी उन्होंने सुना कि अमावस्या तिथि पे सूर्य ग्रहण होगा तो हम वहां पर जाना चाहिए, और उनको भी मालूम था कि कृष्णा वहां पर जाएंगे तो उनसे मिलने के लिए वहां पर गए, क्योंकि जब कृष्णा प्रकट थे यहां ब्रज में तो उसी समय बहुत विलाप कर रहे थे, कृष्णा नहीं है यहां पर, प्राणनाथ नहीं है, तो यहां पर किसी प्रकार से रहते थे, विलाप करते थे हमको दिखाने के लिए भी, जब प्राणनाथ नहीं है तो, और महाप्रभु विप्रलंब भाव विरह भाव देने के लिए आए थे, ये भी महत्वपूर्ण है आगे जाने के लिए, विप्रलंब भाव तो पहले सबसे पहले आसक्ति होने चाहिए कृष्ण के प्रति, नाम रुचि होने चाहिए, इसके बाद भी जब कृष्णा प्रकट हो जाता है भजन में भी उसी समय भी विलाप करना चाहिए, विप्रलंब भाव में पहुंचना है, ऐसा करते हुए भी कृष्ण फिर से प्रकट हो जाता है और ऐसे करके आगे जा सकता है। तो विलाप कर रहे थे ये श्रीमती रानी और दूसरी गोपियां, लेकिन ये भी लिखा है जो विलाप कर रही थी श्रीमती रानी, ये भी वृषभानु नंदिनी राधानी के मूल रूप नहीं थी, ये भी विस्तार रूप है, वियोगिनी राधा वियोग में है, हमेशा वियोग में है, रोती थी। तो वृषभानु नंदिनी ब्रज में है, कृष्णा हमेशा के साथ है, तो जब कृष्णा अप्रकट थे यहां पर जब मथुर गमन करते थे तो वसुदेव कृष्ण के रूप में, तो श्याम सुंदर ब्रजन नंदन आदि रूप कृष्णा अप्रकट हो गए थे, वैसे ही उसी समय श्रीमती रानी वृषभानु नंदिनी अप्रकट हो गई थी, और वियोगिनी राधा प्रकट हो गई थी, और जब मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में उसी समय तो संयोगिनी राधा संयोग संभोग लीला के लिए भी प्रकट थी संयोगिनी राधा, और संयोग कृष्णा वहां पर उपस्थित थे, स्तारूप है भगवान के। वृंदावन परिजा जाप माम एकम पदम न गच्छति, एक पद बाहर आई जाता है कृष्णा. लेकिन फिर भी तो लीला तो है और आगे तो जाना है. लीला में कृष्णा और अलग अलग असुरों का बाहर ब्रज के बाहर भी ब्रज के अंदर भी वध किए थे. लेकिन ब्रज के बाहर भी तो कुरुक्षेत्र के समय बहुत सारे लोग मर गए थे. तो फिर भी कृष्ण को जो द्वारकाधीश है उनको भी सब कुछ मालूम है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के बारे में. और क्योंकि अभिन्न है और विनय भी है तो बहुत बार राधा रानी का चिंतन भी करते थे. विशेष करके रात को श्राप समय कृष्ण का स्मरण करते थे. कृष्णा गोपियां का स्मरण करते थे और स्वप्न में भी पुकारते हैं हे राज हे हे ललिते हे विशाखे. तो उसी समय पात्रानिया ये रुक्मिणी देवी और सत्यभामा तो आचार्य चकित जग गए और सोचे ये उनके प्रेम तो गोपियों के प्रति बहुत उनके प्रेम है. हमारे सिप के प्रति से ज्यादा ऐसा लगता है. तो और ब्रिजवासियों को संतवाने के लिए तो एक बार बलराम को भेज दिया. बलराम अब वहां पर जाइए संतवाने के लिए नंदा बाबा यशोदा और गोपियां. और पहले जब मथुर में थे उद्धव को वहां पर भेज गए थे संतवाने के लिए सबको वहां पर. तो वहां पर आए थे बलराम दो महीने के लिए चैत मास और वैशाख मास के लिए यहां पर आए थे. और तो सब उसी समय तो बहुत खुश थे नंदा बाबा यशोदा और गोपियां भी. तो राधा रानी से भी मिले थे लेकिन उनके साथ तो विलास नहीं किए थे संभव नहीं है. लेकिन और उसी समय उसी दिन आज चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि के उनके नास रास नृत्य हुई रास लीला हुई. तो आपने गोपियों के साथ रास नृत्य किए कृष्णा और कृष्ण ये बलराम. तो दूसरी गोपियां कृष्ण की गोपियां दूर से देखती थी ये रास नृत्य. और रास नृत्य के बाद तो उन्होंने भी वरुणी अमृत पिए थे और इससे भी थोड़ा सा या रसनीत से पहले पीते थे और इससे थोड़ा सा आनंद भी बहुत तो थे और उनको बहुत प्यास लगता था. और इसलिए उन्होंने यमुना को बुलाए वहां पर आने के लिए. थोड़ी दूर से बैठी थी उनको बुलाया हे यमुना आओ यहां पर आओ मेरे को प्यास लगता है. लेकिन यमुना देवी विशाखा के विस्तार रूप है कृष्ण के गोपी है इसलिए यहां पर नहीं आ गए जल्दी. तो इसलिए क्रोधित होकर बलराम अपना हाल प्रकट किया और खींच लिया और आ गए यहां पर यमुना देवी और विनम्र भाव से क्षमा मांगा मैंने अपराध किया है यमुना ने बोला इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं आप तो भगवान है. लेकिन ये भी है तो इसलिए इसके बाद तो रस नृत्य क्रिया मतलब पानी में गोपियों के साथ खेल रहा थे और पानी पिया. लेकिन ये यमुना जो वहां पर प्रकट हो गया उसी समय ये यमुना देवी कि एक विस्तार रूप है क्योंकि कृष्ण के यमुना देवी के साथ तो क्रीड़ा करना संभव नहीं है. तो उनके विस्तार रूप वहां पर प्रकट हो गए यमुना देवी के जो बाद में भी जैसे यमुना देवी ये बंगाल की ओर भी बटे है वहां पर समुद्र में प्रवेश कर रही है. ये विस्तार रूप है यमुना देवी मूल रूप हमेशा ब्रज में है. तो ये पूर्वाचार्यों के व्याख्या में लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दशम स्कंद के सारार्थ संदर्भ। तो श्री बलराम रास नित्य की, और आज भी दो महान भक्त के अविभाव तिथि है। सबसे पहले यह है वंशीवर्धन ठाकुर। ये गौरलीला में जब चैतन्य महाप्रभु थे यहां पर नवद्वीप में, और अद्वैत प्रभु भी उनके घर पे गए, और उसी समय जब वहां पर थे उनके जन्म हुआ वंशीवर्धन ठाकुर, उनका आविर्भाव हुआ उसी समय। दोनों थे चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु। उनका दूसरा नाम था वंशीदास या वंशीवर्धन ठाकुर। और ये कृष्ण लीला में वंशीवर्धन ठाकुर कृष्ण के मुरली है, कृष्ण के वंशी है। तो सबसे प्रिय तो वंशी है। तो कृष्ण के पास बहुत सारे वंशी है और मुरली है, और अलग अलग नाम है, अलग अलग साइज के है। और ये प्रकट हो गया वंशीवर्धन ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला में। और ये प्रसिद्ध थे और बहुत मधुर वाणी से गाते थे और कीर्तन करते थे, बहुत मधुर वाणी से। और जब विष्णुप्रिया माता जी, विष्णुप्रिया देवी कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के धर्म पत्नी, जब अप्रकट हो गए थी, उसी समय उनके चैतन्य महाप्रभु के दमेश्वर महाप्रभु नवद्वीप में है अभी। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे, इससे पहले विष्णुप्रिया को एक मूर्ति दिए थे, अपना रूप के मूर्ति दिए थे, और विष्णुप्रिया उनकी मूर्ति की पूजा करती थी। और इसके बाद तो अप्रक जब संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे तो जीवित थी ये विष्णुप्रिया, क्योंकि उनके पास ये मूर्ति उनके पास था, ये गौरांग महाप्रभु के जो अभी। तो उसी समय मायापुर में थी और वहां पर महाप्रभु की मूर्ति की पूजा करती थी। लेकिन विष्णुप्रिया अप्रकट होने के बाद वंशीवर्धन ठाकुर ये महाप्रभु की मूर्ति की पूजा करते थे और वहां पर रहते थे नवद्वीप में, कोलद्वीप में। आजकल भी वहां पर महाप्रभु की मूर्ति है और दमेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर। दमेश्वर महाप्रभु बहुत सुंदर मूर्ति है और अच्छे तरह से वहां पर उनकी पूजा करते हैं वहां के पुजारी, और कीर्तन करते हैं वहां पर महाप्रभु। राधा कृष्ण के गुणगान वहां पर भी रोज रोज होता है अच्छे तरह से, आजकल भी सेवा होता है वहां पर। तो वंशीवर्धन ठाकुर से प्रार्थन कर रहे हैं जिससे आप श्री चैतन्य महाप्रभु की अच्छे तरह से पूजा कर सके, और उनकी कृपा से हम प्रार्थन कर रहे हैं जिससे हम अच्छे तरह से भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य लीला और नामित्य के लीला का अच्छे तरह से उनका स्मरण कर सके हैं। श्री वंशीवर्धन ठाकुर की। और आज भी ये श्यामानंद प्रभु के अविभाव तिथि है। श्यामानंद प्रभु भी उनका नाम था पहले दुखी कृष्णदास, क्योंकि उनके माँ पिता उनके अविभाव से पहले दूसरे बच्चे थे लेकिन ये सब जल्दी मर गए, तो इसलिए उन्होंने सोचा, और ये भी बहुत दुखी थे क्योंकि बहुत सारे उनके बच्चे मर गए, तो इसलिए उनका नाम दिया थे कृष्णदास, लेकिन दुखी कृष्णदास, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा नाम देता है तो, क्योंकि हम तो दुखी है और हम आशा है कि रह सकता है, कि ये रह सकता है। तो इसके बाद तो कोई कहता है, इसमें लिखा है दुखी कृष्णदास नाम दिया है, कि कोई कहता है कि सिर्फ दिया नाम दुखी, दुखी दिया था नाम, लेकिन हृदय चैतन्य के पास गए और उनसे दीक्षा मिले थे, और उनका नाम तो दिया था भी हृदय चैतन्य कृष्णदास। और तो दीक्षा लेने के बाद के पास उनके साथ रहते थे, लेकिन हृदय चैतन्य तो सखबाब में थे, और कृष्णदास दुखी कृष्णदास ये अकृष्ट थे, ये राधा कृष्ण के लीला के के संबंध में उनका आकर्षण हुआ, तो उनकी इच्छा भी थी वृंदावन जाने के लिए, और इसलिए हृदय चैतन्य भी उनको वहां पर जाने के लिए भी अनुमति दिए थे। और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ रहते थे, और जीव गोस्वामी के पास ये जाते थे शास्त्र अध्ययन करने के लिए। उसी समय जीव गोस्वामी सबके गुरु थे, रूप गोस्वामी सनातन का स्वामी उसी समय वहां पर नए थे उनके अप्रकाश के बाद, तो जीव गोस्वामी सबके गुरु थे, विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान थे, और अच्छे तरह से अध्ययन करते थे उनके साथ। और बाद में ये तीन भी नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु भी प्रचार करते थे बंगाल में, असम में और उस समय श्रीनिवास आचार्य बंगाल में थे, नरोत्तम दास ठाकुर असम में थे, और श्यामानंद प्रभु ओरिया में, ओरिसा में प्रचार करते थे, और उनके साथ भी बहुत सारे शिष्य थे, और सबसे प्रसिद्ध शिष्य है ये रसिकानंद प्रभु थे, और उनके बहुत सारे लीला है श्यामानंद प्रभु के, लेकिन अभी जरूर समय नहीं है, सिर्फ एक प्रसिद्ध लीला है ये, जब यहां पर थे ब्रज में वृंदावन में, और ये रोज रोज राधा श्याम सुंदर के मंदिर में, जिससे भक्त लोग भी यहां पर सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाते थे, लगाता है मंदिर में, वैसे ही श्याम सुंदर मंदिर में विनम्र भाव से ये मंदिर झाड़ू से की सफाई करते थे। तो एक बार एक नूपुर वहां पर क्या कहता है बैल, क्या कहता है घुंगरू उनको मिला था, और उन्हें सोचा ये बहुत सुंदर है, और उसी समय गोपियां दो चार गोपियां वहां पर पहुंच गए, और बोला ये देखो ये हमारे स्वामिनी की है, तो दे दो ये हमको। तो कृष्णदास दुखी कृष्णदास ने बोला तो नहीं, हम जिसका है उसको दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, उसको आने दो तो दे दूंगा जरूर। तो थोड़ा सा बात चल रहा था तो, लेकिन नहीं छोड़ दिया ये दुखी कृष्णदास। तो अंत में ये गोपियां चले गए, और कुछ देर के बाद एक दूसरी गोपी के साथ वहां पर पहुंच गए, और उसी समय ये गोपी उन्होंने बोले ये तो हमारा है। तो उसी समय उन्होंने देखे ये अद्भुत सुंदर रूप है, ये बहुत सुंदर ही है, ये गोपी बहुत सुंदर रूप के है। तो उसी समय ये तो श्रीमती रानी थी, तो ये गुंगू लेकर एक तिलक लगाया तो जिस हमारे जो तिलक इससे अलग है शमनंदा प्रभु के शिष्य आजकल भी ये जो श्रीमतीरा रानी ने किया है ये तिलक लगाया गुंगुरु से तो आजकल भी ये लगाता है तिलक। तो इसके बाद अंतदान हो गए और उन्होंने समझ लिया ये श्रीमतीरा रानी है और ये भी मूर्छित होकर गिर गए भाव विभोर होकर। और इसके बाद तो फिर से अपना सेवा किए थे और दूसरे के साथ मिले थे लेकिन सब दूसरे भक्त ने बोला अरे क्या हो गया है तो तिलक बदल गया है तो उचित नहीं है। तो लेकिन बाद में जीव गोस्वामी के स्वप्न में आया श्रीमतीरा रानी और उनको सब बताई थी कि ये गुंगरू उन्होंने देखा मिला था मेरे को दे दिया और इसलिए मैंने ये तिलक कैसा लगाया है। तो ये जीव गोस्वामी समझ लिया कि दुखी कृष्णदास के उनके कृपा ये श्रीमती रारायण की कृपा पत्र है और इसलिए भी सबको बुलाया वहां पर और बोला कि ये दुखी कृष्णदास श्रीमती रारायण का विशेष कृपा उन्होंने मिला है और इसलिए भी उसी समय उनका नाम दिया है श्यामानंद और उसी समय से श्यामानंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनसे भी प्रार्थना कर रहा है कि हम अच्छे तरह से आगे कर सके तो भक्ति मार्ग में आगे जा सके चैतन्य महाप्रभु के लीला में लीन हो जाए और कृष्ण लीला में हो जाए लीन हो जाए कि हम उनसे प्रार्थना कर रहा है। श्री श्यामानंद प्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भगवतम की। तो आज ये पूर्णिमा तिथि तो है और भजन करना चाहिए और चंद्र ग्रहण भी है तो मंदिर बंद होगा शाम को और लेकिन उसी समय भक्त लोग सब कीर्तन कर रहे हैं ज्यादा कीर्तन करना चाहिए और सूतक भी है जो सन्यासी और ब्रह्मचारी उसी समय कुछ नहीं पता है लेकिन स्त्री जो है वृद्ध लोग जो है और बच्चे भी और जो जिनके पास जो दुर्बल है उनके जो बीमारी लोग जो है ये अल्पाहार भी कर सकते हैं दवाई भी ले सकते कोई बात नहीं है लेकिन ज्यादा भजन करना चाहिए उसी समय। और तो प्रसाद तो सूतक से पहले लेना सबसे अच्छा है तो अभी भी प्रसाद मिल सकता है। हरि बोल श्री श्री गणिताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सामवेद भक्त वृंद की हरे कृष्णा जय जय श्री श्री राधे श्याम।